तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस शो जिसका नाम है क्राइम फ्लिक्स अपार्टमेंट नंबर 14 एपिसोड नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 सुना होगा, आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं जॉडी फोस्टर और उसके पड़ोसी के साथ। जब वो उनसे बात करते हैं तब वो उन्हें बताते हैं जॉडी को कि दरअसल वहाँ पर कई साल पहले एक लड़की रहा करती थी और जो अचानक एक दिन गायब हो जाती है, और उसके बाद से जब भी कोई टेनेंट वहाँ पर रहने आता है तो वो उन्हें बताती हैं कि वो दरअसल अक्सर ये कहा करते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ उस घर में जो है वो अजीब देखने और सुनने को मिला है। खैर जॉडी इस बारे में सोचती हैं और वो अपने जब घर आती हैं तब वो डिसाइड करती हैं कि वो एक चीज़ें ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो अपने दोस्त को बताएगी। और जॉडी जब अपने दोस्त को ये बातें बताती हैं तब वो दरअसल एक ख़ास चीज़ का जिक्र करती हैं कि जो जॉडी के साथ उस घर में रहने के बाद अक्सर हुआ करता था। तो दोस्तों वो ख़ास चीज़ थी एक सपना, एक ड्रीम जो जॉडी हमेशा देखा करती थी। वो अपने दोस्त को सपने के बारे में बताती, वो बताती हैं कि उसे एक लड़की जो है वो दिखाई देती है सपने में और उसे जो है दो लोग खींच कर एक घर में लेके जाते हैं और घर से वो उसे बेसमेंट की तरफ लेके जाते हैं। और जब उसके कलीग के पूछने के बाद जॉडी और बेहतरीन तरीके से उन्हें बताती कि वो सपने में ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी है कि मानो जैसे कि कोई आदमी उसे टॉर्चर कर रहा है, उस इंसान को, उस लड़की को, और वो सारी चीज़ें जहाँ पर उस कमरे में थी वो सारी चीज़ें वो जॉडी अपने दोस्त को बताती हैं। खैर जब ये सब सुनने के बाद जॉडी के दोस्त हैं वो उन्हें सलाह देते हैं कि शायद उन्हें वो घर छोड़ देना चाहिए, और ऐसा हुआ भी क्योंकि जॉडी 3 महीने रहने के बाद उस घर को छोड़ देती हैं। और जॉडी वो पहली महिला है उस लड़की के गायब होने के बाद जो पहली बार कोई टेनेंट वहाँ पर 3 महीना रुका, नहीं तो सब उसके पहले ही छोड़ के जाते थे घर। खैर जॉडी अपनी बच्ची को लेके वहाँ से निकल जाती है और फाइनली वो एक राहत की सांस लेती है। वो सोचती हैं कि शायद ये सपने और ये डरावनी चीज़ें उसके साथ फिर से नहीं होगी। लेकिन जॉडी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जॉडी जब अपने दूसरे घर रहने जाती हैं हेना के साथ, तब एक दिन जॉडी जब हेना को सुलाकर अपने रूम में सोने जाती हैं तब उसे फिर से वही सपना दिखता है। और वो सपना इस बार इतना क्लियर और इतना साफ दिखता है जैसे कि मानो जॉडी वहाँ खुद खड़ी है और वो सारी चीज़ें उसके सामने हो रही हो। तो जॉडी अचानक उठती हैं और अगले दिन वो फिर से अपने दोस्त को ये सारी बताती हैं। तो वो उन्हें सलाह देता है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ हैं जो जो जॉडी से कनेक्ट कर रही हैं, शायद कोई प्रेत आत्मा है जो जॉडी से बात करने की कोशिश कर रही हो। खैर जब एक दिन जब जॉडी के जो दोस्त हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो जो चिको में एक स्थित एक लाइब्रेरी है वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा सर्च करेंगे उस घर के बारे में कि उस घर से क्या ताल्लुक है किसी चीज़ का। तो वो देखते हैं दोस्तों कि एक न्यूज़पेपर कटिंग उसके दोस्त को मिलती है और वो फौरन जॉडी को फ़ोन करते हैं। जॉडी को एक दिन फ़ोन आता है और वो अपनी कलीग से बात करती है और वो उन्हें बताते हैं कि उसे जल्द ही उसके पास आना चाहिए और एक चीज़ जो है वो उसे दिखाने की मतलब चाह रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जॉडी उसे देखें। तो जॉडी वहाँ पहुँचती हैं और वो दोनों भी जो है उस न्यूज़पेपर कटिंग को देखते हैं। तो दोस्तों जब पूरी न्यूज़पेपर कटिंग और वो न्यूज़ पढ़ने के बाद एक नाम लिख के आता है सामने, वो था मैरी एलिजाबेथ स्पैनिकी। ये एक ऐसी औरत है दोस्तों जो 1976 में उसी घर में रहा करती थी जॉडी जिस घर में आज रहती है। खैर थोड़ा और डिटेल वहाँ पर जॉडी पूछताछ करती है लेकिन उसे नहीं मिलता और वो जाती हैं पुलिस स्टेशन चीको के और वो उस डिटेक्टिव से बात करना चाहती थी जो उस मैरी एलिजाबेथ मतलब मार्लिस जो उन्हें दोस्त उसे बुलाते थे मार्लिस, तो मार्लिस के बारे में वो पूछना चाहती थी। और वो जाती हैं चीको के पुलिस स्टेशन और वहाँ डिटेक्टिव हेल से वो बात करती हैं और डिटेक्टिव हेल से बात करते वो तमाम चीज़ें अपनी बताती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो डिटेक्टिव हेल जो है वो जॉडी की सारी बातें सुनते हैं और वो उसे मार्लिस की पूरी दास्तान बताते हैं। दरअसल दोस्तों January 31, 1976 मार्लिस अपने घर में थी और वो घर में एक जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी लिविन में। तो अक्सर जो है वो उनके और उनके बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़े होते थे और किसी बात को लेके मतलब वो डिस्टर्ब थी। हालांकि जो मार्लिस हैं वो कैलिफोर्निया की निवासी नहीं थी, वो दरअसल बॉस्टन में उसका जन्म हुआ था और वो कैलिफोर्निया अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो गई थी। अब क्योंकि मार्लिस जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लेडी थी तब, क्योंकि उसे वो हॉलीवुड की मतलब मूवीज़ में या यूँ कहें कि फिल्म में उसे अदाकारी करने का एक शौक़ था, और वो अपने आप को एक सक्सेसफुल मॉडल देखना चाहती थी और सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी। तो इस सपने को पूरा करने के लिए वो कैलिफोर्निया आई, और हालांकि वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी क्योंकि वो महज मेरे ख्याल से 5 फुट 5 इंच कि वो महिला थी, वो 110 पाउंड का तकरीबन उसका वज़न, दिखने में काफ़ी खूबसूरत, और उसके भूरे बाल थे मार्लिस के। तो इसे देखकर काफ़ी लोग उसे मतलब कॉम्प्लीमेंट करते थे कि शायद उसने मॉडलिंग में चले जाना चाहिए और वो काफ़ी खूबसूरत है ऐसा करके। खैर मार्लिस जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था दोस्तों, लेकिन बाद में उसके कुछ अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ डिफरेंसेस हुए और वो लगातार मतलब उनके झगड़े होते रहे। तो ऐसे ही एक दिन जब मार्लिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाती हैं तो एक जगह पे उसका अपने बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका झगड़ा होता है और वो वहाँ से गुस्से से चले जाती हैं। तो दोस्तों उसी दिन मतलब उसके कुछ दिन बाद चीको पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है, और फ़ोन जो है वो किसी गुमशुदा की जो है शिकायत रजिस्टर करने के लिए था। अब क्योंकि डिटेक्टिव हेल तब वहाँ पे पोस्टेड थे, उन्होंने फ़ोन उठाया और वो जब उन्होंने बात करी तब उन्हें बताया कि मार्लिस करके एक महिला है जो काफ़ी दिनों से लापता है, और जो फ़ोन की दूसरी तरफ था जो दरअसल कोई और नहीं मार्लिस का बॉयफ्रेंड था, वो कहता है पुलिस से कि उसने काफ़ी दिनों से मार्लिस को देखा नहीं है, वो घर नहीं आई है, और वो इस चीज़ को लेके काफ़ी मतलब बहुत शौक में है, क्योंकि दरअसल मार्लिस उस तरीके की लड़की नहीं थी कि वो कहीं अचानक चली जाए और वो खबर ना करे। खैर जो पुलिस वाले हैं वो पूछते हैं और डिटेल में, और जो बॉयफ्रेंड है वो बताता है कि मार्लिस का कैलिफोर्निया में उसके अलावा और कोई नहीं है। तो शायद पुलिस वाले उन्हें कहते कि वो उसके अपने घर में कॉन्टेक्ट करे, शायद वो वापस चली गई हो बॉस्टन। और लेकिन जो बॉयफ्रेंड है वो बताते हैं कि ऐसा उसने चेक किया और वो मार्लिस वहाँ भी नहीं है, बॉस्टन में भी नहीं है। तो इस बात से फिर जो पुलिस वाले हैं वो सकते में आ जाते हैं और वो अपना काम शुरू करते हैं, और वो उस जगह जहाँ पे जाते हैं जहाँ पे मार्लिस को आखिरी बार देखा गया था। तो उनका बॉयफ्रेंड उन्हें लेके जाता है फ्लिट मार्केट चीको में, जहाँ से आखिरी बार उसने मार्लिस को देखा था जिंदा। खैर काफ़ी दिनों तक ये चर्चा होती है, उसके काफ़ी सारे पोस्टर चिपकाए जाते हैं पुलिस वालों को, कोई उसका सबूत नहीं मिलता। और क्योंकि जो मार्लिस हैं वो काफ़ी खूबसूरत थी, तो वो चीको जो एक छोटा सा टाउन है वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग थे भी नहीं कि मतलब किसी आकर्षक महिला को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो। हालांकि काफ़ी दिनों से उसकी जो सर्च पार्टी है वो उसके पीछे थी, लेकिन मार्लिस का कोई पता नहीं था। धीरे धीरे ये केस जो है दोस्तों ठंडे बस्ते में चले गया। 1976 में ये जो दर्ज हुई थी घटना, 1980 आ गया, 81-82 निकल जाता है, और वो हमेशा की तरह मतलब ठंडे बस्ते में वो केस चला जाता है। लेकिन बाद में एक दिन 1984 में एक फ़ोन आता है पुलिस वालों को, जो कि एक पादरी का होता है एक चर्च से चीको के, और वो पादरी उन्हें बताते हैं कि उनके पास एक महिला आई है जो उनके तरफ उनके पास एक जो जुर्म है वो कन्फेस करने आई हैं। क्योंकि अक्सर होता है, आप अगर देखेंगे क्रिश्चियनिटी में, कि लोग अपना मन का जो बोझ है हल्का करने वो चर्च जाते हैं और वो कन्फेस करते हैं फादर के सामने। तो इसी से रिलेटेड वो जानकारी देना चाहती थी। तो काफ़ी दिनों बाद पुलिस को ऐसा कुछ लगा कि शायद ये शायद स्पैनिकी के बारे में, क्योंकि फादर उन्हें बताते हैं कि जो महिला है वो उस महिला के बारे में डिस्कस करना चाहती है जो आज से कई साल पहले चीको से जो है वो लापता हो गई थी। खैर पुलिस वाले पहुँचते हैं, डिटेक्टिव हेल उनके एक सहपाठी दोनों चर्च पहुँचते हैं, और चर्च में पहुँचने के बाद पादरी उन्हें बताते हैं कि एक महिला है जिनका नाम है कैमरन हुकर, वो दरअसल एक क्राइम उन्होंने किया था जिस वजह से वो सो नहीं पा रही हैं, जिस वजह से वो इतने सालों तक काफ़ी खामोश थी और डिप्रेस चल रही थी, और वो पुलिस वालों से कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो डरती थी, इस वजह से वो फादर के पास आई हैं। और जो पुलिस वाले हैं वो अप्रोच करते हैं कैमरन को, वो जाते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का क्राइम उन्होंने किया है या फिर होते हुए देखा है। तो दोस्तों कैमरन बताती हैं कि उनके जो हस्बैंड है जेनिस, एक जैनिस हुकर करके एक आदमी से उनकी शादी हुई थी जब वो मात्र 15 साल की थी। और क्योंकि अब वो घर से मतलब अपने भाग कर उन्होंने शादी की थी और घर वाले भी उतना खुश नहीं थे उसकी शादी से, तो वो जैनिस के साथ ही रहती थी और दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो चीको में ही रहेंगे। चीको से दरअसल थोड़ा सा एक दूर एक एक रिहायशी इलाका है, रेड ब्लफ, वहाँ पर उसका घर था जैनिस का, जी हाँ। और कैमरन उसके साथ रहती थी। और कुछ शादी के कुछ दिनों बाद जो है वो कैमरन बताती हैं पुलिस वालों को कि शादी के कुछ दिनों बाद जैनिस जो है वो अजीब तरह की हरकतें करने लगा है, क्योंकि वो समझती हैं कि जैनिस एक अच्छा इंसान है, लेकिन जैनिस जो था दोस्तों दरअसल एक काफ़ी वाइल्ड और काफ़ी उग्रवादी किस्म का आदमी था। उसे वो काफ़ी वायलेंट हरकतें करता था, कई बार उसके झगड़े होते थे और कई बार उसकी मारपीट भी हुई थी कई लोगों से। तो कैमरन बताती पुलिस वालों को कि इस तरीके का बिहेवियर जैनिस का कैमरन को कतई पता नहीं था, और इस वजह से वो काफ़ी डरा करती थी जैनिस से। तो आगे जब कैमरन बताना शुरू करती हैं कि दरअसल उसका जो हस्बैंड है जैनिस, उसको एक लत थी, लत ऐसी थी कि वो कई महिलाओं के साथ संबंध बनाता था और उसे उन्हें टॉर्चर करने में काफ़ी अच्छा लगता था। जी हाँ दोस्तों, जैनिस एक सीरियल टॉर्चर हम या फिर एक ऐसा आदमी कह सकते हैं जिसे सेक्स स्लेव रखना पसंद था। और ये बात कैमरन को शादी के कुछ ही सालों में पता चली और वो और जैनिस से खौफ खाने लगी। अब क्योंकि कैमरन जो है जैनिस के साथ इतने सालों से रह रही थी, तो जैनिस को भी कैमरन से अब थोड़ा सा वो यूँ कहें कि बोर होने लग गया था, यूँ कहें कि वो उसका मन जो है वो कैमरन से उड़ गया था, और वो कैमरन को मजबूर करता था कि वो उसके साथ इन्वॉल्व हों और उसके लिए एक सेक्स स्लेव ढूंढना चालू करें। इसी खोज में जो है वो कई बार कैमरन ने उसे मना किया, लेकिन जैनिस उसे हमेशा मार पीट कर, डरा धमका कर वो कहता था कि उसके फैमिली को मार देगा, उसके फैमिली को किसी को नहीं छोड़ेगा। इस वजह से वो काफ़ी डरी रहती थी और वो तैयार हो जाती हैं जैनिस का साथ देने। तो एक दिन ऐसे ही ठंड के समय में दोनों निकलते हैं जैनिस के कहने पर, और वो पहुंचते हैं चीको में, और चीको में वो एक जगह पे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और वो आजू बाजू देखते हैं। तो सामने से एक महिला चल के आ रही थी, और उसे देखकर जैनिस जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है और महिला को देखकर, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि मार्लिस खुद थी। वो उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर कर अपने घर की ओर तरफ जा रही थी, और जो जैनिस जो है वो अचानक मार्लिस के पास में जाके कार रुकता है, और कैमरन जो है वो कार में बैठी हुई थी, और कैमरन जो है वो मार्लिस को लिफ्ट ऑफर करती हैं। अब लिफ्ट ऑफर करने के बाद जब मार्लिस देखती हैं कि उस गाड़ी में एक आदमी है और एक औरत भी है, तो वो लिफ्ट ले सकती हैं क्योंकि वो सेफ भी था, क्योंकि वहाँ पर एक महिला मौजूद थी। और इसी के साथ जो है कैमरन दरवाज़ा खोलती हैं और मार्लिस उनके गाड़ी में बैठती हैं। यही एक डिसीज़न मार्लिस के लिए काफ़ी ख़तरनाक रह गया दोस्तों, क्योंकि इस पल के बाद मार्लिस को ज़िंदा किसी ने नहीं देखा। जब जैनिस कैमरन ने मार्लिस को लिफ्ट ऑफर करी और वो उसके गाड़ी में बैठी, तो वो लोग अपने घर की ओर गए, और उसी बीच में कैमरन ने मार्लिस को किसी तरीके से बेहोश कर दिया। और जब मार्लिस की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सर पर एक हेडबॉक्स चढ़ा हुआ है। हेडबॉक्स दोस्तों आप जानते होंगे कि एक बक्सा नुमा चीज़ होती है जिसे किसी के सर पर रख देते हैं और बाहर से उसे लॉक कर दिया जाता है। दरअसल वो एक लकड़े का होता है अमूमन, और वो काफ़ी वज़नी होता है, तकरीबन 4.5-5 किलो उसका वज़न होता है। और जब जैनिस को होश माफ़ कीजिए जब मार्लिस को होश आता है, तो वो देखती हैं कि उसके इर्द गिर्द सब काला है, मतलब उस वो कुछ नहीं देख पा रही हैं, और बाहर से ना किसी की आवाज़ आ रही, ना वो जब वो खुद चिल्ला रही थी तो उसकी भी आवाज़ बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। खैर, ये सब होने के बाद जैनिस जो है अपने घर की तरफ पहुँचता है रेड ब्लफ में, और वो कैमरन से कहता है कि अंदर जाकर वो घर का दरवाज़ा खोल दे और वापस आकर वो हेल्प करें जैनिस की मार्लिस को घर के अंदर ले जाने में। बिल्कुल कैमरन ऐसा ही करती हैं, वो घर जाती हैं अपना दरवाज़ा खोलकर। जब वो वापस आती हैं तब वो जैनिस जो है मार्लिस को पीछे के सीट से निकाल कर बाहर लेके आता है कार के, और दोनों उसे पकड़ कर उनके घर लेके जाते हैं। और वहाँ पर एक कमरा रखा था दोस्तों, मतलब कमरा बनाया हुआ था बेसमेंट में जैनिस के घर पर, जहाँ वो मार्लिस को रखता है। अब क्योंकि कैमरन जो है वो पूरा जैनिस के अंडर कंट्रोल में थी अब, और मार्लिस भी जो है वो उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हालांकि जब वो नीचे पहुंचे तब उसे डक्ट टेप से बांधा गया चेयर पर बैठकर, मार्लिस को उसके हाथ बांधे गए, उसके पैर बांधे गए, और जैनिस जो है वो कैमरन से कहता है कि वो ऊपर जाके सब खिड़की दरवाजे बंद कर लें और इस चीज़ का पता किसी को ना चलने दें। और कैमरन जो है वो बिल्कुल वैसा ही करती है, और वो हेडबॉक्स जब जैनिस मार्लिस के सर से उतारता है तो वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती हैं वो, और जैनिस जो है इस चीज़ से काफ़ी डर जाता है और काफ़ी गुस्सा हो जाता है, तो उसके मुंह में वो डक्ट टेप बांध देता है और वो उसे वार्निंग देता है कि अगर वो ज़्यादा चिल्लाई तो वो उसके वोकल कॉर्ड्स जो है वो काट देगा। हालांकि जैनिस इस चीज़ से काफ़ी घबरा जाती हैं, मार्लिस इस चीज़ से काफ़ी घबरा जाती है, और जैनिस जो है वो कंटिन्यू मार्लिस के साथ रेप करता है, उसे ज़बरदस्ती करता है और कई दिनों तक उसे घर के अंदर बंद करके रखता है। और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है दोस्तों, तकरीबन 6-7 दिन तक ये चीज़ें होती हैं मार्लिस के साथ। और एक दिन मौका पाकर जो है मार्लिस जब चिल्लाना शुरू कर देती हैं और इस चीज़ से जैनिस का दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वो अपने किचन में जाता है, और किचन में जाने के बाद वो वहाँ से चाकू लेके आता है और बेसमेंट में मार्लिस की तरफ बढ़ता है और उसके जो चाकू जो है वो उसके गले के अंदर डालकर उसके वोकल कॉर्ड्स जो है काट देता है। अब जैनिस, क्योंकि कोई दोस्तों कोई डॉक्टर नहीं था पेशे से, उसे ऑपरेशन मेथड के बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो गलती से मार्लिस की जो वोकल कॉर्ड्स है वो गलती से कहीं और से काट देता है, और इस वक्त मार्लिस की काफ़ी बुरी हालत में तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। कैमरन इस चीज़ को देखकर बेहद सख्त हो जाती, क्योंकि उसने जैनिस को ये सब करते हुए कभी नहीं देखा था। उसे लगता था कि जैनिस एक बुरा आदमी ज़रूर है लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन उस दिन जैनिस ने जो कैमरन के सामने किया वो किसी वहशीपन से कम नहीं था। इसी दरमियान जो है जैनिस मार्लिस की लाश को लटका कर रख देता है, उसके दोनों हाथ बांध कर वहीं मार्लिस को जो है वो लटकाया जाता है, और कैमरन से कहता है कि वो सारा खून जो वहाँ पड़ा हुआ है वो उसे साफ कर दे। कैमरन बिल्कुल ऐसा ही करती हैं और दोनों उसकी लाश को पैक करते हैं, और उसकी लाश को जो है वो पैक करने के बाद वो अपने गाड़ी के डिक्की में रखते हैं और वो निकल जाते हैं रात में रेड ब्लफ से किसी आउटस्कर्ट्स एरिया में, कंट्री साइड एरिया में, जहाँ सिर्फ जंगल है और जहाँ ज़्यादा कोई आबादी रहती नहीं है। खैर, जब ये सब कुछ हो जाता है तब वो जैनिस जो है एक जगह पे कार रोक देता है, वो काफ़ी जंगल और वुड्स वाला एरिया होता है, वहाँ पर वो अंदर गाड़ी पार्क करके एक ड्रम वहाँ पर वो लेके आता है, और ड्रम में मार्लिस के सारे कपड़े, खून से लदे हुए कपड़े वो जलाता है और मार्लिस की बॉडी को वहीं वो गाड़ देता है। उसके बाद दोनों वापस घर पर आते हैं, और उसके बाद जैनिस और कैमरन तो मतलब कई दिनों वो बाहर नहीं निकलते, और कैमरन जो है वो दरअसल इस चीज़ से बहुत घबराई हुई थी, वो जैनिस के साथ अपने आप को सेफ नहीं समझ रही थी। खैर, दिन गुजरते हैं दोस्तों, लेकिन जैनिस की भूख शांत नहीं होती। अब उसे जब मार्लिस के बारे में जब वो अखबार में पढ़ता है और जब वो उसके पोस्टर देखता है तब उसे लगता है कि शायद वो पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों, क्योंकि उस दरमियान जैनिस और कैमरन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और कोई भी वो शख्स नहीं था जिसने इन दोनों को मार्लिस के साथ देखा हो। खैर, जब साल गुजरते हैं तब एक साल बाद, दो साल बाद जब जैनिस जो है वो फिर से एक बार निकलता है कैमरन के साथ में एक और शिकार की तलाश में। अब जैनिस जो है वो काफ़ी कंफर्म था कि वो पुलिस की नज़रों में नहीं है और शायद वो ऐसा क्राइम फिर से कर सकता है। वो फिर से अपने लिए सेक्स स्लेव है वो ढूंढने निकलता है, और कैमरन उसके साथ चल देती हैं। और कॉलिन स्टान करके एक लड़की थी दोस्तों जो जैनिस का अगला शिकार होने वाली थी। कॉलिन स्टान भी बिल्कुल खूबसूरत, और उसके भी भूरे बाल और काफ़ी आकर्षक, अट्रैक्टिव वो दिखती थी, तो जो है जैनिस की नज़र उस पर पड़ी और उसने कॉलिन स्टान को ठीक उसी तरह किडनैप किया जैसे उसने मार्लिस को किया था। खैर, जब कॉलिन स्टान जो है वो जेनिस और कैमरन के साथ उसके घर पहुंचती है, वो ठीक उसी तरीके से उसे बांध कर रखता है जैसे उसने मार्लिस को बांध कर रखा था, और बाद में उसके वो सभी चीज़ें, सभी अत्याचार उस पर करता है जो उसने मार्लिस के साथ किया था। और बार बार जेनिस जो है वो कॉलिन को ये धमकी देता था कि अगर उसने चिल्लाने की कोशिश की तो वो उसके वोकल कॉर्ड कर देगा। और वो जेनिस जो था वो कॉलिन को कुछ इस प्रकार से उसने सख्ते मिला दिया था, और तब ही कैमरन जो थी वो वहीं खड़ी हुई थी, और कैमरन को वो नज़ारा बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उसने ये चीज़ फिर से उसके साथ हो रही हो, क्योंकि ऑलरेडी मार्लिस के साथ वो चीज़ हुई थी। तो कई बार जेनिस कॉलिन के ऊपर रेप करता है, उसे धमकी देता है, उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, और वो सब कुछ करता है जो उसने मार्लिस के साथ किया था। और वो उसे बताता है कि अगर उसने चिल्लाने की कोशिश की तो वो उसी तरीके से वोकल कॉर्ड्स काटेगा जिस तरीके से उसने मार्लिस के काट दिए थे, और इसमें वो उसकी जान भी जा सकती है। ये धमकी जो है वो कॉलिन को इतनी ज़्यादा नेचुरल लग रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जिस शख्स के साथ वहाँ पर है वो सब कुछ कर सकता है। खैर, कॉलिन स्टान के साथ उसकी ये जो हरकतें हैं, जो सारा जो टॉर्चर है, वो काफ़ी दिनों तक चलता है, महीनों तक चलता है। और वो कॉलिन स्टान को, मतलब जब भी वो नीचे जाता बेसमेंट में जाकर उसके साथ रेप करता था, वो उसको वैसे ही एक जो रॉड है वहाँ पर वो उसे लटका कर रख देता था, जो एक बीम की तरह एक वहाँ पे रॉड गया हुआ था छत पर, वहाँ पे वो कॉलिन के दोनों हाथ बांध कर उसे बगैर कपड़े के ही वो उसे वहाँ पर लटका कर चले जाता था। कॉलिन घंटों वहाँ पर ऐसे लटकते हुए रहती थी, और वो समझ चुकी थी कि अब शायद वहाँ से वो जिंदा नहीं निकल पाएगी। खैर, कॉलिन एक बार, कॉलिन ने जब अपना इंटरव्यू दिया था दोस्तों मीडिया में, तो वो कॉलिन बताती हैं कि जब जेनिस और कैमरन, जब ये हरकतें उनके साथ हो रही थी, तब कैमरन जो है कई बार जेनिस को रोकती थी, वो कई बार उसे धमकाती थी, और जेनिस जो है हमेशा कैमरन को मारकर उसके ऊपर टॉर्चर करके वो उसे चुप करा देता था, और वो उसे धमकी देता था कि वो उसके फैमिली को बर्बाद कर देगा, उनको मार देगा। तो खैर, कॉलिन ये तो समझ जाते हैं कि कैमरन भी वहाँ पर फंस चुकी हैं उस आदमी के साथ, उस वैशी दरिंदे के साथ, और वो मौका पाकर हमेशा कैमरन से बात करती थी। जब भी जेनिस जो है वो बाहर जाता था, तब कैमरन नीचे आती थी और कॉलिन उससे बात करती थी, और वो उससे समझाती थी कि वो उसके लिए, मतलब कैमरन कॉलिन के लिए और अपने खुद के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, वो दोनों वहाँ से भाग सकते हैं। खैर, वहाँ पर साल गुजरते हैं और कॉलिन का जो है कुछ अता पता नहीं चलता, क्योंकि पुलिस कॉलिन के बारे में भी जान चुकी थी, क्योंकि उसके फैमिली वाले बता चुके थे कि कॉलिन भी मिसिंग है, वो कई दिनों से उनका उनसे बात नहीं हो पा रही है। खैर, ये सब गुजरता है और जेनिस जो है वो अब इतना खुद में इतना वो भरोसा करने लगता है कि उसे अभी कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि किसी के पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। लेकिन एक दिन मौका पाकर कैमरन और कॉलिन दोनों जेनिस के चंगुल से भाग जाते हैं, उस घर को छोड़कर वो निकल जाते हैं, क्योंकि कॉलिन जो है वो हमेशा कैमरन से वही बात किया करती थी कि जब भी कब जेनिस बाहर जाए तो वो मौका पाकर अपने घर से निकल जाए। खैर, कैमरन भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान थी जेनिस से, तो वो डिसाइड करती हैं कि वो कॉलिन को उसके हत्थे नहीं चढ़ने देगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी मार्लिस को मार दिया था और वो नहीं चाहती थी कैमरन की मार्लिस के साथ जो हुआ है वो कॉलिन के साथ भी हो। तो दोनों उस घर से भाग जाते हैं, और जब भागकर जब कॉलिन अपने घर पहुंचती हैं, तब कैमरन उसे बताती हैं कि वो कहाँ थी इतने दिनों तक, वो किसी को ना बताए और किसी से ये चीज़ शेयर ना करे कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो जेनिस उन दोनों को ढूंढ लेगा और वो उनके परिवार के साथ उनको भी मार देगा। कॉलिन को वहाँ रहकर जिस टॉर्चर, जिस तरीके का कॉलिन ने सहा था, उसके बाद दोस्तों कॉलिन को भी जेनिस से काफ़ी डर लगने लग गया था, और वो सोचती हैं कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसके परिवार के साथ नहीं होने देगी। खैर, कैमरन और कॉलिन अभी अलग अलग रहते थे, कॉलिन अपने परिवार के साथ रहती थी और कैमरन अपने फैमिली के पास वापस आके उनके साथ रहना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक कैमरन के दिमाग में जो मार्लिस की जो बात है वो हमेशा घूमती थी क्योंकि वो उसे ग्रीफ था दोस्तों, उसे दुख था कि वो मार्लिस को नहीं बचा पाए और उसकी जितनी बेदर्दी से हत्या जैनिस ने की थी उसके साथ वो भी शामिल थी कैमरन। भले ही कैमरन का तब कोई जोर ना चल रहा हो या फिर कैमरन को वो सब मजबूरी में करना पड़ रहा हो खुद की जान बचाने के लिए। खैर दोस्तों, इसी दरमियान कैमरन जो है वो भगवान पे भरोसा करने लगती हैं और वो अमूमन चर्च में जाती हैं और एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि वो चर्च में जाकर फादर को सारी बातें बता देगी। खैर और उसके बाद तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे कैमरन फादर को बताती हैं और फादर पुलिस वालों को बताते। तो इस वक्त जो है कैमरन की गवाही पर सबसे पहली बार कई सालों बाद 1984 मतलब लगभग 8 से 10 सालों बाद मार्लिस का नाम एक बार फिर से आ जाता है सामने। और क्योंकि अब मार्लिस को गायब हुए 8 से 10 साल हो गए तो उससे रिलेटेड जितने भी सबूत थे वो पुलिस वालों के हाथ में नहीं थे। और जैनिस को जब पुलिस वालों ने पकड़ा गया तब उसने कबूल किया कि उसने कोलिन स्टैन को किडनैप किया, लेकिन उसने मार्लिस एलिजाबेथ स्पेनी की मतलब मैरी एलिजाबेथ स्पेनी की इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कैमरन की गवाही पर जो है जैनिस मुकदमा दर्ज करती हैं मार्लिस का भी। अब क्योंकि मुकदमा जो तो कोर्ट में था और कोर्ट में आपको प्रूफ करना पड़ता है सारे सबूत। खैर जो कैमरन और जो पुलिस वाले हैं उनके बीच में बात होती है और कैमरन वो रेडी हो जाती हैं कि जैनिस ने उसकी लाश को मतलब मार्लिस की लाश को कहाँ दफनाया था। तो जो कैमरन है वो पुलिस वालों को लेके जाती है दोस्तों एक लेसन पार्क, वहीं चीको रेड ब्लफ और एक जगह थी वहाँ पर लेसन पार्क करके। दोस्तों आप यूँ समझिए कि चीको से हम डायरेक्टली लेसन पार्क जा सकते हैं और अगर आपको रेड ब्लफ की तरफ जाना पड़ेगा तो आपको थोड़ा पैरेलल आपको चीको से आगे निकलना पड़ेगा नॉर्थ की ओर। तो कुछ इस तरीके से लेसन पार्क की जगह थी कि लोकेशन थी कि आप चीको से अगर आपने लेसन पार्क की तरफ जाना है तो काफ़ी सारा बीच में जंगल लगता है और रेड ब्लफ से भी अगर आप लेसन पार्क की तरफ जाएंगे तो आपको काफ़ी सारा जंगल वहाँ पे लगेगा। अब क्योंकि इस बात को 8 से 10 साल हुए हैं तो कैमरन जो है वो समझ नहीं पाए कि दरअसल वो उसने जो जैनिस ने है वो लाश कहाँ दफनाई है। फिर भी वो तकरीबन जो सिटी से है 44 माइल्स चीको से 44 माइल्स दूर लेसन पार्क की ओर जो है वो लेके जाते हैं और वो बताती हैं कि ऐसी किसी जगह पे जैनिस ने जो है वो मार्लिस को मारकर उसकी लाश वहाँ पे दफनाई थी। खैर काफ़ी पुलिस वाले काफ़ी उनकी जो पेट्रोलिंग टीम है काफ़ी सारे लोग जो है वो आ गए थे पुलिस वालों की मदद करने उसकी लाश को ढूंढने, लेकिन कहीं भी जो है वो मार्लिस की लाश नहीं मिलती। अब क्योंकि मार्लिस की लाश नहीं थी तो उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि आपको चाहिए उसके लिए डेड बॉडी और वो प्रूफ होना चाहिए कि डेड बॉडी जो है वो मार्लिस की है। खैर कई बार उसका जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया चीको पुलिस की ओर से जिसमें काफ़ी नेटिव लोग भी इन्वॉल्व हुए, लेकिन कहीं भी जो है मार्लिस की कोई घटना या फिर कोई भी उसका सबूत नहीं मिल पाया। और जो दूसरी ओर जो है वो कॉलिन स्टैन की गवाही पर जो है वो जैनिस के ऊपर और कैमरन की गवाही के ऊपर जैनिस के ऊपर टॉर्चर किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया गया और जिसमें जो है जैनिस की सज़ा हुई और सज़ा मुकम्मल हुई उसकी उम्र कैद में बिना पैरोल के। तो बिना पैरोल के लगभग 100 सालों की सज़ा जो है वो यूएस कानून के तरफ से जो है वो जैनिस को मिली। अब क्योंकि मार्लिस का केस एक ऐसा केस था जो अभी भी अनसॉल्वड है, अभी भी उसके पास में कोई सबूत नहीं है और जो मार्लिस के जो परिवार वाले हैं उसकी जो बहन है वो हमेशा पुलिस वालों को ये पूछती थी कि कैमरन से अगर आप थोड़ा और सख्ती से पूछेंगे तो शायद उसे पता चल जाए कि वो जगह कहाँ है, क्योंकि उसकी बहन को जो शक था वो ये था कि कैमरन कहीं ना कहीं पुलिस वालों का साथ नहीं दे रही, क्योंकि अगर एक बार मार्लिस की बॉडी मिल जाए तो कैमरन पर भी मर्डर और काफ़ी सारी धाराएं उस पर भी लगेगी तो उसको अपनी जान का भी खतरा रहेगा, वो शायद उसको भी सज़ा मिलेगी। लेकिन पुलिस वाले जो है वो कैमरन से कई बार पूछताछ करने के बाद वो उन्हें वहीं पे लेके जाती है और वो कहती हैं कि क्योंकि 8 से 10 साल गुजर चुके हैं तो उसे नहीं पता कि वो उसकी लाश एक्चुअल में कहाँ है। खैर दोस्तों, अब आते हैं जॉडी फोस्टर के ऊपर। ये थी सारी मार्लिस की कहानी, जो एक सपने की तरह जॉडी के सपनों में उसे मतलब दिखाई देती थी। और जब से वो उस घर में पहुंची थी, रहना शुरू किया था उसने, तो जब जॉडी फोस्टर जो दोस्तों जब मार्लिस के बारे में उसे पता चलता है, तो वो अपने पुलिस वालों को अपने अपनी एक घटना को पुलिस वालों के सामने बताते कि जब हैना जो है वो जब उसके रूम में जब वो किसी अपनी फ्रेंड से बात करती थी, जो हैना कहती थी कि उसकी फ्रेंड है, तब वो एक अपनी माँ को बताया करती थी, जॉर्डी को बताया करती थी एक नाम, और वो नाम था कुछ माइलीज, MYLIZ। तो जब हैना ने जब इस नाम के बारे में जब जॉर्डी को बताया, तब जॉर्डी ने तब उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जैसे ही मार्लिस की कहानी जब जॉर्डी के सामने आई, तब उसे समझ में आया कि दरअसल हैना जिस दोस्त के बारे में बात करती, वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि मार्लिस थी, क्योंकि उसकी स्पेलिंग हूबहू वही थी जो हैना ने मतलब अपने दोस्त के बारे में उसे बताया था, जो उसके दोस्त का नाम है। तो इस तरीके से जो है जॉर्डी को पता चलता है, और वो अपने ख्वाब के बारे में बताती हैं पुलिस वालों को। और वो ख्वाब में हमेशा एक चीज़ देखा करती थी दोस्तों, जब भी वो जॉर्डी का ख्वाब मुकम्मल होता था, तब वो देखती थी कि चार जो है लेटर्स जो है वो उसके सामने, चार नंबर जो है वो उसके सपने में घूमते थे, और वो नंबर थे 35.76। कई दिनों तक उसका ये जो नंबर है 35.76, ये कई बार जॉर्डी के सपने में ये जो नंबर है वो देखती थी उसी सपने के बाद। और जब जॉर्डी उस घर से निकल रही थी, तब इसी नंबर के साथ साथ उसे और एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर दिखने लगा, जो था A17। इसका मतलब अभी जॉर्डी के पास 35.76 A17, ये एक पूरा नोट था जो वो अपने पुलिस वालों को बताती हैं। इस ख्वाब को बताने के बाद जो डिटेक्टिव हेल हैं, वो सोचते हैं कि शायद ये किसी तरीका लोकेशन है, या किसी तरीके की कोई नंबर है जिससे पता चले कि मार्लिस की लाश कहाँ पर है। अब क्योंकि जॉर्डी जो है उस तरीके की सारी चीज़ें जब वो डिटेक्टिव को बताती हैं, तो डिटेक्टिव भी उस बात पे विश्वास करने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो जॉर्डी जब मार्लिस का कत्ल हुआ 1976 में, तब शायद वो चीको में भी नहीं थी, और शायद वो तब काफ़ी बच्ची रही होगी या पैदा भी नहीं हुई होगी, तो उसे मार्लिस के बारे में कैसा पता चलेगा। और जो उसकी बच्ची जो है वो माइलिस की, जो उसकी फ्रेंड है जिसे वो माइलिस कहाँ करती थी, उसे वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि हैना तब 3 साल की थी। खैर कई बार पुलिस वालों की तरफ से डिटेक्टिव हेल की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसने कई बार जॉर्डी से पूछताछ की कि उसे वो नंबर्स वो बताएं कि किस तरीके का वो नंबर है, वो किसी तरीके का एक लोकेशन है, या किसी तरीके का रोड है, या वो कोई किलोमीटर है जहाँ पर उसकी लाश दफनाई गई है, या कुछ। लेकिन जॉर्डी को इस नंबर के अलावा कुछ और कभी नहीं दिखा। जॉर्डी हमेशा उससे पूछती थी कि 35.76 ये शायद एक कोई लोकेशन है जिस पर मार्लिस की डेड बॉडी मिल सकती है, और A17 ये शायद एक तरीके का रोड है जिस रोड पर, या फिर उस एक तरीके का कोई पार्ट है जिसमें मार्लिस की बॉडी हो सकती है। हालांकि ये नंबर टटोलने पर कई बार कुछ अलग अलग लोकेशंस जो है पुलिस वालों के सामने, लेकिन एक डिफरेंट एक स्पेसिफिक लोकेशन उन्हें कभी नहीं मिला। खैर कई बार इस जॉर्डी के सपने पर भी जब वो काम किया गया, तो पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा दोस्तों। तो इस वजह से वो केस एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चले गया, और वो यूँ मानो कि वो केस आज भी ओपन है चिको पुलिस स्टेशन में। डिटेक्टिव हेल आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उसे मार्लिस के बारे में कुछ पता चले, या उसकी बॉडी के बारे में कुछ पता चले, ताकि वो उसके बहन मतलब मार्लिस के घर वालों को कुछ ना कुछ एक कॉन्क्रीट आंसर दे पाए। और जॉर्डी जो है वो आज भी दोस्तों इस कभी पब्लिक इंटरव्यू में, या अभी कभी कुछ ऐसा होता है जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जॉर्डी से मिलते हैं, तो वो इस बारे में शेयर करती हैं। और जॉर्डी फोस्टर जो है वो उनका एक फेसबुक अकाउंट है बाकायदा, अगर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। जॉर्डी फोस्टर कभी कभी इस चीज़ को लेके ब्लॉग बनाती हैं, लिखती हैं। और कोलिन स्टान आज अपने परिवार के साथ हैं, शादीशुदा हैं और खुश हैं। और कैमरन जो है वो उसे कुछ सज़ा ज़रूर मिलती है, लेकिन मार्लिस का क्योंकि अता पता नहीं चलता और उसका जो क्राइम है वो कभी कमिट या प्रूफ यू समझे कि प्रूफ नहीं हो पाया, तो इस वजह से कैमरन भी आज जेल के बाहर हैं। और चैनिस जो है उसे लगभग 2012 या 15 में पैरल की इजाज़त दी गई है उसके अच्छे बर्ताव को लेकर। खैर तो दोस्तों ये थी कहानी पूरी अपार्टमेंट नंबर 14 की। अगर आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी, और अगर आप चाहें तो जॉर्डी फोस्टर को आप फेसबुक में सर्च कर सकते हैं, उनकी कुछ ब्लॉग या फिर उससे रिलेटेड पोस्ट आप देख सकते हैं। और समय हो गया इस कहानी को यहीं ख़त्म करने का, और उम्मीद है मुझे कि आपको ये सब कहानी पसंद आई होगी। और अगली बार जब मैं आपके साथ आपको एक कोई कहानी सुनाऊंगा तो वो बेहद ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट कहानी होने वाली दोस्तों, क्योंकि आपने उस तरीके की कहानी मुझे लगता है कभी नहीं सुनी होगी। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और बिल्कुल सुनते रहें क्राइम फ्लिक्स पर। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए टेक केयर।